साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर, आज गांव आजीविका और हम इसे पर। हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य के सिहोरा जिले से जुड़ रहे आदर्श कृषक अरविंद राउत जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार नमस्कार
सर जी, हम आपसे जानना चाह रहे कि आप खेती करते हो और विशेषकर आपके क्षेत्र में धान होता है, तो धान का बिचड़ा किस तरह तैयार किया जाता है और क्या क्या सावधानी बरतनी होती है?
हमारे जो परंपरा से चलती आई किसानी है वो वही पैटर्न आज भी अपनाया जाता है। जैसा मिरग नक्षत्र लगने के पहले पूरा खेत को तैयार किया जाता है और अभी आधुनिक खेती का उसमें मिश्रण किया जाता है। पहले वखर से खेत को तैयार किया जाता है, उसके बाद में हल्का पानी आने के बाद में जमीन को तैयार करने के बाद में आजकल रोटरी से जमीन को बारीक किया जाता है, क्योंकि आज समय बहुत कम लोगों के पास में है और लेबर का मजूर का बहुत अभाव है, तो मशीन से काम आजकल ज्यादा किया जाता है।
सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने एकड़ में खेती करते हो और जो खेती कर रहे और जो आपने धान के लिए जो बिचड़ा तैयार किया उसके लिए आप बीज कहाँ से लाते हो, इसका बीजारोपण कैसे करते हो?
मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आज आप कृषि केंद्र से जो बिजाई खरीदते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं होती। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी बिजाई खराब होती है, लेकिन मैं किसान भाइयों को हित की बात कहूंगा कि बिजाई वो खुद ही तैयार करे। और मैं 17-18 एकड़ किसानी करता हूं मैं धान की, और उसमें बिजाई मैं खुद घर में ही तैयार करता हूं। और आज अगर आप कृषि केंद्र से बिजाई खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत महंगी गिरती है, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो गिरती है, और किसान का जो धान है वो 20 रुपए हार्डली बहुत हो गया तो 22 रुपए 25 रुपए तक जाता है। तो अगर किसान अगर जब उनकी फसल निकलती है उसी समय अगर वो एक दो मजूर लगा के या फिर खुद कर सकता होगा तो खुद करके अगर वो जो बाली होती है धान की अच्छी वाली उसको अगर वो जमा करे और उसको अच्छी सुरक्षित तैयार रखे जब बीज डालते हैं उस समय में, हम लोग इधर में वही बिजाई को यूज करते हैं और वो यूज करने के पहले हम नमक के पानी में वो बिजाई को डालते हैं, उसमें से जो कोंडा रहता है और हमारे इधर में गांव के लैंग्वेज में बदरा बोलते हैं वो निकल जाता है और ओरिजिनल बिजाई और सस्ती बिजाई हमको उपलब्ध हो जाती है।
सर, जो आप स्वयं के द्वारा बनाई गई जो बिजाई करते हो बीजारोपण और जिसको रोवा बोलते हैं अपने भंडारा जिले में गोंदिया जिले में जो लगाते रोवा बोलते हैं, तो यह बहुत अच्छी फसल निकलती है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग मिश्रित खेती करते हैं तो क्या आप धान के साथ में और क्या अन्य खेती इसके साथ करते हो?
अभी जैसा पम की खेती जिस जगह में है तो वहाँ पे गन्ना भी लगाया जाता है 2-3 एकड़ में, लेकिन अभी बरसात के सीजन में गन्ने के सिवाय तो कोई दूसरी फसल नहीं होती, धान और गन्ना ही होता है। और जब धान निकलने के बाद में हम गेहूं लगाते हैं, गेहूं दूसरे महीने में कट जाता है और हम तीसरी फसल फिर से धान की लगाते हैं।
यानी एक साल में कितनी फसल लेते हो आप धान की?
धान की दो फसल होती है, गेहूं की एक फसल होती है।
गेहूं एक, धान की दो?
हाँ हाँ हाँ। आपको फिर उस हिसाब से बीज का चयन करना होगा कि कम समय में कौन सा बीज आपको फसल जल्दी देगा ताकि आपको गेहूं के लिए जमीन उपलब्ध हो सके, क्योंकि गेहूं की फसल के साथ ठंड काले में अगर लगी तो गेहूं का जो दाना अच्छा मोटा होता है और आप फरवरी के एंडिंग तक उसको कटाई कर सकते हैं।
सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसा मध्य प्रदेश में यदि हम धान की फसल की बात करें तो बालाघाट में होता है और महाराष्ट्र में भंडारा, तुमसर, गोंदिया उधर छत्तीसगढ़ तक धान की फसल होती है। धान के फसल के साथ दलहन की फसल भी हम लोगों ने देखा है, तो आप धान के साथ कौन सा दलहन लगाते हो?
अभी हम इधर में तुअर की बिजाई जो लगाते बांध पे, और उसको साथ में तिल का भी मिश्रण कर देते हैं बीच बीच में। और मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि अपनी आवक बढ़ाने के हिसाब से, अपने जमीन को फायदा पहुंचाने के हिसाब से, अगर जिस बांध तुअर लगाते हैं, वो तुअर के बाजू बाजू से अगर आप सोनताक कहते हैं, जिसे बोरू कहते हैं, बोरू सन, कोई सन कहता है, कोई बोरू कहता है, हमारे इधर में सोनताक कहते हैं उसे, अगर वो सोनताक का बीज अगर वो बांध पे लगा है, तो उसको आने वाले दिन में खाद की, उसको जैविक खाद का उपलब्धता मिलेंगी और रासायनिक खाद की जरूरत नहीं गिरेगी, और किसान को फसल के उत्पादन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा तुअर के साथ में अगर वो लगाता है।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धान के फसल में आप कौन से खाद का उपयोग करते हैं, और आपके क्षेत्र में अन्य किसान लोग कौन से खाद का उपयोग करते हैं?
जनरली बहुतांश किसान तो रासायनिक खाद का यूज करते हैं। मैं रासायनिक खाद का प्रमाण मैं भी यूज करता हूं, लेकिन प्रमाण बहुत कम होता है, क्योंकि मेरे यहाँ गाय कम से कम 15 से 20 गाय है, तो मैं उसका अपना जैविक खाद का ज्यादा वापर यूज करता हूँ। और किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा लालच में, मैं मानता हूँ किसानी में कुछ इन्हें ज्यादा मुनाफे की किसानी नहीं हो रही है, अपने फसल को उतना दाम नहीं मिल रहा है, तो रासायनिक खत्म कैसा होता है, आने वाले दिन में वो अपने ही पैर पे कुराड़ी मारने वाला काम होगा।
अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के दिनों में जो हम धान की खेती करते हैं, वो अधिकतर जब खेत तैयार हो जाता है तो उसमें कीचड़ बहुत ज्यादा होता है, उस कीचड़ में वोवा लगाया जाता है, तो उस समय सांप बिच्छू या अन्य जानवरों का डर रहता है, तो इसमें सुरक्षा क्या क्या अपनानी चाहिए?
किसान ने तो अब कैसा है खेती में अभी उतना तकलीफ नहीं है सांप बिच्छू का, क्योंकि अपनी दवाइयों का ज्यादा वापर होने से बहुत से जो निसर्ग जो किसानों के मित्र है वो बहुत से मर चुके हैं, और एक का दुक्का केस होता है सर्पदंश का, बोलो या बिच्छू दंश का, तो वो घबराए नहीं, वो तुरंत उसमें पट्टी कस के बांधे पैर या हाथ में जहां उसने दंश किया है उसके ऊपर भाग में, हल्का सा वो आपका हसिया है या चाकू है उससे हल्का सा चीरा मार ले या उसका ब्लड निकाल ले, और तुरंत में नजदीक के अस्पताल में ले जाके उसका इलाज कराए।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बातें साझा की, इसके लिए मोबाइल वाणी पुनः एक बार आपका धन्यवाद करती है।
धन्यवाद।